رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مفتاح القرآن کا سبق نمبر 7 دیکھیں گے جو پیج نمبر 30 پہ ہے بک کے. کاف زبر کا اور کاف زیر کی ان علامتوں کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کہاں استعمال ہوتی ہیں. تو یہ دونوں علامتیں اسم، فعل یا حرف کے آخر میں استعمال ہوتی ہیں. آپ دیکھیں اس طرح کیا کریں، یہ جو پوری بک میں آپ کو کٹھی چیزیں پڑھنے میں بعد میں سمجھ نہیں آتی نا، ساتھ ایک نوٹ پیڈ لے لیں، اسی بک پیج پہ لگانا چاہیے. آپ کو میں ایک یقین کریں شارٹ کٹ بتا رہی ہوں، مجھے بتانا نہیں چاہیے ویسے آپ کو، لیکن آپ کو پھر یاد کرنا آسان ہو جائے گا. آپ نمبر ون لکھیں کا کی، یعنی جو ہے اس کی فرسٹ تھنگ کیا پتہ چلا کہ یہ اسم، فعل اور حرف تینوں کے ساتھ لگتا ہے. بس یہ ایک جملہ یاد کر لیں، کا اور کی کیا ہے، یہ علامتیں اسم، فعل اور حرف کے ساتھ یاد ہوتی ہیں. کا کی اسم، فعل اور حرف کے ساتھ یاد ہوتی ہیں. چھوٹے چھوٹے انڈیکس پیپر بنا لیں، انفو پیپر بنا لیں، چپکنے والے بنا لیں، کچھ کر لیں جو آپ کا دل چاہے. آپ اپنی کمپیوٹر ڈیسک پہ لگا لیں صدف، آپ کی جتنی دفعہ ادھر نظر پڑے گی آپ پہلا جملہ یاد کر لیں، اسم، فعل اور حرف کے لیے استعمال ہوتی ہیں. یاد ہو گیا کہ نہیں؟ یقین کریں جو مجاہد ہوتے ہیں نا، وہ ایک وقت میں ایک کام نہیں کرتا، اور اس کو ہر وقت ایک مقصد، ایک دھن. اور وہ یہ بھی نہیں کہتا میں نے پیچھے رہنا ہے، کا کی کیوں، بس میں بیٹھ رہے ہیں یاد کر لیجئے، ڈرائیونگ کر رہے ہیں سامنے ڈیش بورڈ پہ رکھ لیں، آپ کے اپنے سارے غم بھول جائیں گے، آپ کو ساری خوشیاں اپنی پیچھے لگیں گی جب آپ کا ذہن اتنا آکیوپائڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ساری کلاس مل کے بولے، کا اور کی پہلی کیا علامت ہے، سب بولے. مجھے تو ایک لفظ نہیں سمجھ آیا، سب ساتھ بولے. اس کو اپنے لفظوں میں بولے، جب ہم بالکل بک کے جملے یاد کرتے ہیں نا تو ہمارا ذہن اتنا گریپ نہیں کرتا. آپ بولیں کا کی جو ہے یہ اسم، فعل اور حرف سب کے ساتھ لگتا ہے. جب ہم اپنے لفظوں میں جملہ بول لیتے ہیں نا، اور اگر اس وقت بولتے ہی آپ لکھ بھی لیں اپنے پاس چپکنے والے پیپر پہ، آپ کے دماغ پہ زیادہ جائے گا. ٹھیک ہے، چلیے اب ہم دیکھیں گے کہ یہ تینوں استعمال کیسے پھر ہوتے ہیں. کاف زبر کا سے کیا ہے، اب اس میں آپ لکھیے دوسرا آپ کا بلٹ پوائنٹ آج کی اس لیسن کا کیا ہے، کہ کاف زبر کا جو ہے یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ تو آسان ہے، اور یہ آپ سب کو پڑھنے کی اب ضرورت بھی بہت ہے کہ کا کیوں ہے اور کی کیوں ہے، کیونکہ آپ عورتوں کو بھی کی کہہ رہے ہیں، مردوں کو بھی کی کہہ رہے ہیں. تو کا کیا ہے، واحد مذکر، ایک مرد کے لیے. اب اس کو دیکھتے ہیں، ہم نے چونکہ اوپر بات کر لی تھی کہ اسم پہ بھی لگتا ہے، فعل پہ بھی اور حرف پہ، تینوں کو، دونوں کو ہم تینوں کے ساتھ دیکھیں گے. اسما کے ساتھ کا کیسے لگتا ہے، اگر کا اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً تیرا، تیری، تیرے، یا پھر اپنا، اپنی اور اپنا، اپنے سے کیا جاتا ہے. مثلاً اسم کیا ہے، عمل. ٹھیک ہے، عمل کے بعد لگ گیا کاف، عملوکا، ہاں، قولوکا، ازواجوکا، ربوکا، قوموکا، تو سب جگہ کیا ترجمہ آ رہا ہے، تیرا. ایاکا، ٹھیک ہے، ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، وہ ویسے اسم نہیں ہے، وہ آگے حرف کے ساتھ آئے گی، مثال اس میں ہم دیکھیں گے. تو بہرحال عمل کے ساتھ یا قوم کے ساتھ جب آیا تو یہ اس سے ترجمہ کیا مراد ہوا، تیرا، تیری، اور یہ بعد میں آیا. اس کا تذکرہ سورہ زمر آیت 65 میں، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو نے شرک کیا تو تیرا عمل ضائع کر دوں گا. اسی طرح دوسری اس کی مثال ہے سورہ زخرف کی آیت 44، وانہ لذکر لک ولقومک، اور بے شک یہ قرآن تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے نصیحت ہے. اسی طرح تیسری اس کی مثال سورہ الاعراف کی آیت 205 میں، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدَرُّعًا وَخِيفَةً، اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں گڑ گڑا کر اور ڈرتے ہوئے. یہ بات سب کو سمجھ آ گئی ہے، ساری کلاس مل کے دہرائے، اس کو اپنے لفظوں میں دہرائیے اونچی آواز سے، شابر. اللہ اکبر. پہلی بات، کا کی جو ہے یہ اسم، فعل، حرف کے ساتھ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، دوسری علامت اب ہم دیکھ رہے ہیں کا اسم کے ساتھ کیسے لگتا ہے. تو دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ کا جب اسم کے بعد آئے، یہ لفظ بعد والا لفظ آپ بڑا کر کے لکھ لیں اپنے نوٹ پیڈ میں، اس سے آپ کا مائنڈ میپ بنے گا. دیکھیں واقعی اپنے نوٹس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، हम अपने लफ्ज़ों में किसी चीज़ को बड़ा कर लें, छोटा कर लें, उसको हाईलाइट कर लें, वो चीज़ साथ ही हमारे माइंड पे लिखी जाती है। तो ये लफ्ज़ जब हम अपने पास लिखेंगे तो आप इसमें बाद का लफ्ज़ बड़ा कर लें, इस्म के बाद लगती है तो तेरा तेरी तेरे, अपना अपनी अपने, अमलु का कौम मु का तेरा अमल अपना अमल। ठीक है, अब देखते हैं अफ़ाल के साथ, फ़ेल के साथ कब लगता है। अगर का फ़ेल के आखिर में हो तो तर्जमा अमूमन तुझे, आपको, आपसे किया जाता है। और इसको इतना फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती, आप देखेंगे कि हम खुद ही उसका वो तर्जमा कर रहे होते हैं। मसलन आप देखिए, वद्दा का, उसने छोड़ दिया आपको या तुझे। कहाँ लिखा है ये? सूरह दोहा आयत नंबर 3 में आता है, मा वद्दा का रब्बू का व मा कला, आपके रब ने ना तो आपको छोड़ा है और ना वो आपसे नाराज़ हुआ है। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक और इसकी मिसाल है, व इदा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, सूरत बकरा आयत 186 है, कि जब आपसे, सअला क्या है लफ्ज़, फ़ेल माजी, काफ आगे साथ लग गया तो फ़ेल के बाद लगा। और यहाँ से आपको पता चला कि फ़ेल के साथ जब लगता है तो इसके अंदर तुझे का मानी। अब आप इसमें ये तो नहीं कर सकते कि मसलन जैसे माँ वद्दा का रब्बू का में ऊपर आप देखिए ना, तेरी, नहीं छोड़ा तेरे रब ने, नहीं, वद्दा का तुझे नहीं छोड़ा, समझ रहे, यानी तुझे का मानी आएगा या आपको। फिर इसी तरह आप देखिए खलक खलक का सूरत इन्फितार आयत 7 में आता है, अल्लसी खलक फसवाक, जिसने तुझे पैदा किया बस इसने तुझे दुरुस्त बना दिया। तो यहाँ क्या बात समझ आई कि फेल के बाद जब ये लफ्ज़ लगता है तो तुझे, आपको और आपसे तर्जमा किया जाता है। बात क्लियर है? आगे चलते, हरूफ के साथ जब ये आता है का, तो फिर क्या तर्जमा है। अगर का हरूफ के आखिर में हो तो तर्जमा अमूमन तू, तुझ, तेरी किया जाता है। मसलन देखिएगा, इन न का, बेशक तू, इन्ना क्या है, हर्फ है ना, का बेशक तू, इलेई का तेरी तरफ, मिन का तुझसे, अलेई का तुझसे, इन्ना का ला तहदी मन अहबबता, सूरत कसस आयत 56 में आता है, बेशक तू जिसे चाहे हिदायत नहीं दे सकता। अब हम में से कोई ये तर्जमा कभी इन्ना का ये करता है, बेशक तेरी, हाँ नहीं करते ना तर्जमा, बेशक तुम्हारा, नहीं, बेशक तुम। तो अंडरस्टूड बात है कि तर्जमे में सेंस बनती हुई वाले ही तर्जमा किया जाता है। वल्लज़ीन यूमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक, और वो लोग जो ईमान लाते हैं इस पर जो तेरी तरफ उतारा गया। तो उन्ज़िला के बाद इलैक का, इला क्या है, हर्फ है, और का क्या है, तुझे है। ठीक है, ये बात क्लियर है, मुश्किल तो नहीं है ना। बाज़ दफ़ा चीज़ें इतनी आसान होती हैं तो ये वो फिर भी नहीं समझ आती कि इतनी आसान क्यों पढ़ चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। हाँ? मुझे लगता है ये कुछ ऐसा ही है। कभी का इस्मों के शुरू में भी आ जाता है, इस सूरत में ये तशबीह का मफहूम देता है। ये आपके लिए बड़ी नई चीज़ है, तर्जमे में तो आपने 20 बार पढ़ी है लेकिन रूल्स में आप आज पढ़ रहे हैं। कभी का इस्म के शुरू में आ जाता है, इस सूरत में ये तशबीह का मफहूम देता है, और तर्जमा अमूमन जैसे की तरह मसल और मानित किया जाता है। इसकी मिसालें आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। का सही बिन, कहाँ आती है ये मिसाल, बारिश की तरह, का मैंने मानित, हम पढ़ते हैं ना तशबीह का। फिर इसी तरह देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि अकसईब मिनस समाई, सूरत बकरा आयत 19 है। फिर इसी तरह सूरत इब्राहिम की आयत नंबर 26 में आता है, व मसलु कलीमतिन खबीसतिन का शजरतिन खबीसा। तो ये तर्जमा तो आप सभी ठीक लिखते हैं, राइट, मानित, मिसल, लाइक यू, सिमिलर टू यू। ठीक है, फिर इसी तरह सूरत नूर आयत 40 में आता है, औ कजुलुमातिन फी बहरिल लुज्जिश, या इनकी मिसाल गहरे समंदर में अंधेरों की तरह है। सूरह मुरसलात आयत 32 यानी 32 में आता है कि इन्नहा तरमी बिशररिन कल कसर, बेशक वो जहन्नम चिंगारियां फेंकती हैं महल जैसी। क्लियर हो गया जी? काफ के रूल सदब सरा दोहराइए सबके साथ, शाबाश, ऊंची बात से, ताकि आपका माइंड भी सुने और ये भी फायदा उठाएं आपसे। गो अहेड। ठीक है, ठीक है, याद हो गया ना? मुश्किल तो नहीं है ना? चलिए मिसालें भी साथ साथ एक एक याद कर ले तो कभी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। अब हम देखते हैं काफ ज़ेर की के रूल्स। की नंबर एक, ये वाहिद मुअन्नस के लिए आता है। हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं इसको? वइया की, जब कोई आपको कहता है जज़ाकल्ला खैर, जज़ाकल्ला। अब आप देखिए लफ्ज़, देखिए जज़ा, ये जो लफ्ज़ अभी हमने किया ना, जज़ा क्या है? इसम है ना। तो आप देखिए कि इसम के बाद जब काफ आया तो तेरी है ना, तो हम किसी को, मर्द को कुछ कहें तो कहते हैं जज़ाकल्ला खैर, काफ पे ज़बर है। और अगर आप कह किसी मर्द को रहे हैं तो आप कहते हैं जज़ाकल्ला खैर, तो आपने उसकी जिन्स जिन्सी बदल दी। हाँ, इसी तरह आप देखिए, अभी हमने पढ़ा ना कि हर्फ के साथ भी आता है इया का। कोई हमें कहता है कि जज़ाकल्ला खैर, तो आगे से हम क्या कहते हैं? इया का, आपको भी। तो अगर आप किसी मर्द को कह दें इया की, तर्जमा भी गलत और उस मर्द का भी दिल तोड़ दिया आपने। ठीक है, और ये गलती बहुत शुरू में करते हैं, जब हमें शुरू में आदत पड़ जाती है, हर एक को एक ही बोल रहे होते हैं। और औरतों में चूंकि हम या की बहुत कहते हैं, तो जब कोई मर्द भी हम पे एहसान करे तो हम उसको भी या की कह देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। फिर इसी तरह देखें कि वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ। अब इसकी भी इस मिसालें हम देखेंगे दोनों तरह, तीनों तरह से बेसिकली। अगर की इस्म के आखिर में हो तो तर्जमा अमूमन तेरा, तेरी, तेरे या अपना, अपनी, अपने से किया जाता है। बिल्कुल वही रूल है जो पहले उधर था। देखिए सारे रूल्स वही हैं, सिर्फ मुजक्कर से मुअन्नस का फ़र्क है। आप देख लेंगे तो बिल्कुल एक ही लफ्ज़ है। उम्मू की, रब्बू की, अबू की, लिजम्बू की। हाँ, तो की सब किस चीज़ का है? इधर मुअन्नस का है। जैसे सूरत मरियम की आयत 19 में आता है, काला इन्नमा अना रसूलु रब्बी की। हज़रत मरियम से फरिश्ते ने कहा, बेशक मैं तेरे रब का भेजा हुआ कासिद हूँ। फिर इसी तरह सूरत मरियम ही की आयत 28 में आता है, या उख्त हारून मा कान अबू की मरअ सऊ इम वमा कानत उम्मु की बगिया। ए हारून की बहन, तेरा बाप बुरा आदमी न था और तेरी माँ भी बदकार ना थी। तो आप देखिए कि ये क्यों नहीं उन्होंने कहा कि या उख्त हारून मा कान अबू का, क्योंकि वो एक औरत से बात कर रहे थे, तो अबू की। इसी तरह ओम की, जम्बी की, जैसे सूरत यूसुफ की आयत 29 में आता है, वस्तग़फिरी लिज़म्बी की, और तू औरत बख्शिश मांग अपने गुनाह की। अपने गुनाह की बख्शिश जो है तुझे मांगनी चाहिए, तो फीमेल का सीगा था। ठीक है, क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे देखते हैं, अफाल के साथ अगर काफ़सर की आए तो क्या होगा? फेल के आखिर में हो तो तर्जमा अमूमन तुझे या आपको किया जाता है। मसलन देखिए, इस्तफा की, तहर की, ये हज़रत मरियम के लिए सीगे इस्तेमाल हुए सूरत आल इमरान की आयत 42 में, या मरियम इन्नल्लाह हस्तफा की व तहर की। ए मरियम, बेशक अल्लाह ने तुझे चुन लिया और तुझे पाक किया। ये क्यों नहीं फरिश्ते ने कहा कि या मरियमु इन्नल्लाह हस्तफा का बतहरा का? जवाब दीजिए उल्फत, फीमेल से बात हो रही थी। क्लियर है, तर्जमा सबका एक है, फीमेल और मेल का, सिर्फ मुजक्कर और मुअन्नस का फर्क है। तीसरी चीज वही बिल्कुल जो पीछे हम काफ जबर काफ में पढ़ चुके, कि अगर काफ ज़ेर की हर्फ के आखिर में हो तो तर्जमा अमूमन तू, तुझ, तेरी, तेरे, अपनी से किया जाता है। मसलन अलई की, इन नकी, इलई की, लकी। अलई की क्या है? तुझ पर। इन नकी, बेशक तू। इलई की तेरी अपनी तरफ, लकी तेरे लिए। दलाइल सूरह यूसुफी की आयत 29 में आता है, इन्ना की कुंत मिनल खातिन, बेशक तू है खताकारों में से। अच्छा, ऐसी गलतियां हुफाज को बड़ी लगती हैं, वो हाफिज जिनको तर्जमा नहीं आता। बड़ी एक दिलचस्प बात बताती हूँ आपको कि हाफिज जो बनते हैं ना लोग, उनको एक तरफ तो तर्जमा पता हो तो फ़ायदा होता है, जैसे यहाँ अब उनको पीछे से साफ पता है कि हज़रत मरियम की बात चल रही है, तो वो खुद ब खुद कहेंगे कि इस्तफा की वतहरा की वज़म्बे की। हाँ, वो खुद ब खुद लाशोर में आ जाएगा कि एक स्टोरी चल रही है बीबी मरियम की या अजीज़ मिसर की बीबी की, तो सारे कुंती कुंती आएंगे, जेर पे आएगी। ये फ़ायदा होता है उनको हिफ्स के साथ जब तर्जमा भी आता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर तर्जमा आता हो तो हिफ्स मुश्किल हो जाता है। वो कहाँ होता है? जहाँ जहन्नुम के नाम आते हैं, जन्नत के नाम आते हैं। तर्जमे के अंदर तो नामों में कोई भी नाम ले लें, वहाँ ये भूल जाता है कि यहाँ जहीम था कि यहाँ पे जहन्नुम था, या यहाँ पे खोतामा था, या यहाँ पे समझ लें कि अन्नार था, क्योंकि तर्जमे से तो बात समझ आ रही होती है लेकिन वो लफ्ज़ मिल जाता है। तो बहरहाल जिनको बाहर तर्जमा आता है वो कम गलतियाँ करते हैं क्योंकि उनको सेंस समझ आ रही होती है। एक बड़ा दिलचस्प वाक़या एक इब्तिसाम मिलाई है, तो उन्होंने अपना सुनाया एक बार कि वो हाफिज़ है, तो अब हुआ क्या कि वो तरावियों में कुरान सुना रहे थे, इनको तर्जमा भी आता था, इनके पीछे जो लिसनर था सामे जिसको बोलते हैं उसको तर्जमा शायद नहीं आता होगा। सूरह शुरा की आयतें ये पढ़ रहे थे जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम के असा को मारने का तذکرہ था। अब आप देखते हैं कुरान पाक में हर जगह जो असा मारने का वो क्या है, पत्थर पे मारा, लेकिन सिर्फ सूरह शुरा में एक जगह ऐसा था कि जहाँ मूसा ने असा बाहर में मारा ताकि पानी रुका। अब कहते हैं कि मैं वहाँ आया तो मैं ठीक पढ़ रहा था, तो मेरा सामे मुझे गलत करके बाहर की जगह हिजर पढ़ा रहा था, हजर। कहते एक दफ़ा वो रोका उसने, फिर मैंने सही पढ़ा, इसने फिर मुझे रोका, तीसरी बार जब मैंने देखा कि मैं समझ गया कि ये पत्थर पे मार रहा है, इस वक्त पानी पे मार रहा है, कहते मैंने शूट बांधी, मैं रुका ही कोई नहीं, मैं दो आयतें जाके आगे रुका, क्या अब रोको मुझे, कैसे रोकते हो। तो बहरहाल ये इस तरह के मामलात हो जाते हैं। तो यहाँ बिल्कुल पढ़ते हुए मुझे यही अंदाज़ा हुआ कि तर्जमा आता हो तो ये याद करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर इसी तरह आप देखिए कि सूरह कसस की आयत नंबर 7 में आता है, इन्ना रादूहु इलैकी। अब आप देखिए इलैकी किसको का जुमला याद पढ़ते ही कोई समझ आया किसकी बात है? उम्मे मूसा। फिक्र ना करें मूसा की माँ, हम तेरा बेटा तुझे वापस लौटा देंगे, वजाइलहु मिनल मुरसलीन, और हम इसको कर देंगे रसूलों में से। फिर इसी तरह सूरह मरियम की आयत 25 में आता है, वखुज़ी इलैकी बिजिस इन नखलती तो साकित अलैकी रुतबन जनिया, और हिला यानी मूव कर अपनी तरफ खजूर के तने को, वो खजूर का दरख्त गिराएगा तुझ पर ताज़ा पकी हुई खजूरें। तो अलैकी, अब ये अलामत जान के आपको कुरान पाक की कितनी चीज़ें समझ आ गई होंगी, खुशी होती है ना। चलें इसी खुशी में फिर आपने इस सबक का होमवर्क क्या करना है कि इसकी 10-10 दे दो। चलें 5 और 10 के बीच में कर लेते हैं, 7.5, ठीक है। जो अच्छे बच्चे हैं वो 8 करेंगे, जो कम अच्छे हैं वो 7 मिसालें लिख के लाएंगे, ठीक है। आप लोग इसको करेंगे और बहुत आसान है। मैं इसलिए एक ही बे रखती हूँ कि आप में से किसी की राय आई थी कि एक एक दें ताकि हमें याद ना भूल ना जाए। सदब याद हो गया आज का सबक, मुश्किल तो नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकियों को भी समझ आ गया, तो इंशाल्लाह ताला हम इसको फिर करके इसका आपकी मिसालों को दे के फिर दे। अगला इतना आसान है कि मेरा दिल चाह रहा है मैं जल्दी से करा दूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं कराना चाहिए, ठीक है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।